आरवी की सुनते ही अभी ने अपने हाथ रोक लिए। उसने आरवी की बाह पर हाथ मारकर उसे वापस सोफे पर धकेल दिया और खुद वहां से जाते हुए कहा, सफेद बाल तेरे होंगी सटिया जो गई है, और दूर रहना मुझसे वरना डॉक्टर टकली तुम भी कहलाओगी। अभी को जाते देख आरवी ने गंदा सा मुंह बनाया। उसने अपने बाल पीछे की तरफ झटक दिए और इधर उधर फैली रुई और खुद की हालत को देख सोफे पर पलथी लगाकर बैठ गई। कितना खराब है हूं, गर्दन झटकाते हुए, सारे पिलोस का कबाड़ा कर दिया और मुझे भी नहीं छोड़ा, सारे बालों में रुई ही रुई कर दी। बालों को साफ करते हुए मेहरा सदन। विनीत वर्तिका को देखकर नीचे आया। दिनकर जी ने पूछा, कैसी है वो? ठीक है दादू, रेस्ट करने को बोलकर आया हूं दी को, विनीत ने कहा। दिनकर जी ऊपर की तरफ देखते हुए बोले, वो कुछ बोला? विनीत ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, कमरे से बाहर निकलेगा तब ना। दिनकर जी मुस्कुराते हुए बोले, आज निकलेगा भी नहीं, रहने दो अंदर ही, वरना उसका गुस्सा दूसरों पर फूट पड़ेगा जो सही नहीं होगा। विनीत ने कहा, पर दादू कब तक? 2 घंटे हो गए अभी तक रूम में है, आप कहेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो हम बात भी कर लेंगे। दिनकर जी छड़ी पकड़कर सोफे से उठते हुए बोले, कुछ बात मानता है वो हमारी, सारी नहीं, जानते हो ना, और जिस बात को लेकर कह रहे हो वो तो मानेगा ही नहीं, तुम और मैं दोनों उसकी जिद से वाकिफ हैं। ये तो है दादू, पर आप तो आरवी को रोक सकते थे ना जाने से, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं कहा? विनीत ने सवाल किया। दिनकर जी ने ऊपर की तरफ देखा और बोले, जिसको कहना चाहिए था उसने कुछ नहीं कहा, फिर हम क्या कहते? करने दो से जो कर रहा है अपनी करके रहेगा, हम सब ना कुछ कहें तो बेहतर है बेटा। अच्छा, हम आराम करने जा रहे हैं। इतना कहकर दिनकर जी अपने कमरे की तरफ चले गए। विनीत राधे की तरफ देखते हुए वहीं सोफे पर बैठ गया। राधे पास आते हुए बोला, विनीत बाबा आप चिंता मत कीजिए, मालिक को अयांश बाबा से उम्मीद है, वो गई है यहाँ से तो यहाँ आएगी भी, वो भी अयांश बाबा लेकर आएंगे। विनीत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ लाएगा तो अयांश ही, पर सोच रहा हूँ कि इनकी जिद और गुस्सा कहीं इनके बीच दूरियां ना बढ़ा दे। राधे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये भी है, दोनों ही जिद्दी है और गुस्से वाले, वो अयांश बाबा से ज्यादा जिद्दी है और अयांश बाबा उनसे ज्यादा गुस्सा करने वाले। हाँ, विनीत ने कहा। दोनों की नज़र ऊपर अयांश के रूम के बंद दरवाजे की तरफ चली गई। अयांश अपने रूम में पिलो मुंह के नीचे लगाए ओंधे मुंह बेड पर लेटा था, वो आंखें बंद किए हुए था। उसे आरवी से हुई पहली मुलाकात से लेकर उसके यहाँ से आज जाने तक के सारे पल याद आ रहे थे। जैसे ही उसे आरवी का मंगलसूत्र फेंकना दिखाई दिया और उसका गुड बाय कहना कानों में सुनाई दिया, अयांश फट से बेड से उठ गया। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। 5 मिनट में कपड़े चेंज किए, आईने के सामने आकर बाल बनाए और अपना फोन और गाड़ी की चाबी लिया कमरे से निकल गया। राधे विनीत के लिए चाय लेकर आ रहा था, जैसे ही उसकी नज़र ऊपर से आ रहे अयांश पर पड़ी वो तपाक से बोला, अयांश बाबा। ये सुनते ही विनीत ने उसकी तरफ देखकर पीछे की तरफ गर्दन घुमाई। अयांश सीढ़ियों से नीचे आ चुका था। विनीत सोफे से उठकर कुछ कहने को हुआ कि अयांश तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। विनीत ने उसे आवाज़ दी पर वो नहीं रुका। विनीत अयांश को कहते हुए उसके पीछे भागता है, पर जब तक बाहर पहुंचा अयांश अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल चुका था। विनीत उसे जाते देख बोला, इतनी जल्दी में अब ये कहाँ गया होगा? उधर आरवी अभी के साथ सोफे पर बैठी थी, अभी वापस वहां आ गया और अपने हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट में से एक आरवी की तरफ फेंक कर दूसरा खुद खोलकर सोफे पर बैठ गया और आरवी को घूरते हुए चुपचाप खाने लगा। आरवी ने चिप्स का पैकेट सामने के टेबल पर फेंक दिया और मुंह फुलाकर बैठ गई। ये देख अभी बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही मिलेगा खाने को, मैं ना कुछ बनाने वाला ना बाहर से ऑर्डर करने वाला, जिसे खाना हो खाए, इन चिप्स से ही काम चलाए। इतना गुस्सा है मुझसे कि मेरे लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाने को कुछ नहीं बनाएगा? ऐसा भी क्या गुनाह हो गया? मत कर ऐसा। हाँ, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि किसी को कदर नहीं है ना मेरी ना मेरे प्यार की। अभी ने जैसे ही ये कहा आरवी उठकर उसके पास चली आई और बाह पकड़ते हुए उसके पास बैठ गई। अपना सिर उसकी बाह पर टिकाते हुए बोली, आई एम सॉरी यार, सब सडनली हुआ, कुछ समझ ना आया, और तुझे तो पता है तुमसे छुपाकर कभी कुछ नहीं किया मैंने, और कुछ भी हो पहली याद तेरी ही आती है, इस बार भी आई, पर मजबूर थी इसलिए झूठ बोला, सच छुपाया, कुछ नहीं बताया। एक ही तो दोस्त है मेरा सबसे अच्छा, जो बिन कहे सब जान जाता है, और देख कुछ नहीं बताया तुझे, फिर भी तुम जान गए ना कि गड़बड़ तो थी, तुझे खोना नहीं चाहती थी, सो चाहकर भी तुझसे कुछ नहीं कह पाई, समझ ना यार, कुछ तो बोल। आरवी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पर अभी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चिप्स खा रहा था। आरवी ने पैकेट उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। मैं बात कर रही हूँ, तुझे खाने की पड़ी है, मेरी बात सुन रहा है ना तू? अभी सुनता कानों से हूँ मुंह से नहीं, अभी ने आरवी की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला। क्यों कर रहा है ऐसा यार? माफी मांगी ना मैंने, माफ कर दे। आज से पहले तो तुमने इतना गुस्सा ना किया। आज से पहले तुमने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया था आरवी। तुझे मेरी पड़ी थी कि मुझे कुछ ना हो जाए। जरा सोच तो, प्यार तो एक तरह से खोए बैठा था मैं, ऊपर से मेरी दोस्त ने ऐसा किया जिसकी मुझे खबर तक नहीं हुई। क्या बचा मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। जानती है ना तुम कितना मैटर करती हो तुम। सब कुछ मानता हूँ मैं तुमको, परिवार, दोस्त, सब। और सोच, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुम मुझे खतरे में नहीं देख सकती। ज्यादा तो नहीं जानता क्या हुआ, पर इतना तो समझता हूँ तेरी मर्जी से नहीं हुआ और तेरे साथ गलत हुआ है, और मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरी हेल्प तक नहीं। उल्टा, जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसके साथ जो हुआ उसका इल्ज़ाम भी तेरे सिर लगा दिया, जिसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी तुझे दोषी मानते हुए तेरे साथ क्या किया उन्होंने, ये तुम अच्छे से जानती हो ना। खुद पर लगे इल्ज़ामों को हटाने के लिए लड़ी तुम, पर इतना तो मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तेरा मेन मकसद तो वर्तिका को ठीक कर उसे और मुझे साथ लाना रहा होगा ना। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? गलतफहमी उसे हुई, फिर मिस्टर मेहरा को हुई, जिनकी वजह से सहा किसने? सिर्फ तुमने। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनको मैं माफ़ नहीं करने वाला। सोच रहा हूँ, काश वर्तिका ना मेरी ज़िंदगी में आती, ना मेरी दोस्त को कुछ सहना पड़ता। देखा जाए तो सब मेरे कारण ही हुआ है। और सच कह रहा हूँ कि इस बीच अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मेरा प्यार मेरी दोस्त की ज़िंदगी ख़राब करने की वजह बन गया। अभी बोल ही रहा था कि आरवी ने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। क्या बोल रहा है? तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, समझा? और सब ठीक है अब, गलतफहमी थी जो दूर हो गई। देख, मुझे कुछ नहीं हुआ, सही सलामत तो हूँ ना मैं। और ऐसा मत कर अभी, वो तुझसे प्यार करती है और तुम भी चाहते हो उसे, अनजाने में ही सही। देखा जाए तो वजह मैं बनी ना, पर देख, मैं खुद को दोष नहीं दे रही हूँ, तुम भी मत दो। गुस्सा, नाराज़गी, दूरी, ये चीज़ें रहने दो ना, अब तो सब अच्छे से शुरू किया जा सकता है, मौका भी है ना।
तभी अभी ने उसकी बात काट दी। तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रही हो? कितनी हर्ट हुई होगी तुम जो तेरे साथ हुआ उस वजह से। ये बात मैं समझता हूँ, कोई समझे या ना समझे, तेरी अपनी शादी को लेकर क्या क्या सपने थे, भूल गई तुम? मेरे प्यार के कारण मिस्टर मेहरा ने तेरे प्यार को जेल भिजवा दिया और खुद तुझसे शादी कर ली, याद है ना? आरवी को कंधों से पकड़ते हुए। तभी आरवी हंसती, कैसे सपने शादी के, कैसा प्यार, वो सब एक दिखावा था। और सच कहूँ, अच्छी बात है, सक्षम वालिया सलाखों के पीछे है, मिस्टर मेहरा की वजह से ही सही, क्योंकि वो इसी लायक है। धोखा देने वाले, विश्वासघात करने वाले, जान लेने की कोशिश करने वाले, गंदी सोच रखने वाला घटिया इंसान, यही डिजर्व करता है। शुक्र मना, तुझसे प्यार करने वाली ने तुझसे सच्चा प्यार किया। वो तो एक महज गलतफहमी का शिकार हो गई, वरना उससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता तुमसे। ऐसा प्यार है तेरा, तू ना मिले तो जीना छोड़ दे। और जिससे मैंने प्यार किया था उसके लिए सिर्फ मैं एक ज़रूरत थी, ऐसी ज़रूरत जिसके बारे में सोचकर भी शर्माती है मुझे, कि कोई कैसे इतना गिर सकता है कि अपने गंदे इरादों में कामयाब होने के लिए हर हद नीचे गिर सकता है। सब कुछ दिखावा था जो हम जानते थे उसके बारे में। उसके अच्छे चेहरे के पीछे उसका दूसरा रूप छुपा था, जो कि उसकी सिर्फ घटिया नीयत को उजागर करता है। असलियत तो उसकी कुछ और ही निकली, और आज मुझे उसके नाम से भी घिन आती है, आरवी ने सक्षम के बारे में सोचते हुए गुस्से में बोला क्रमशः।